نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد، مردے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اس میں کچھ باتیں اتفاقی ہیں، کچھ اختلافی ہیں. صورتیں یہ ہیں کہ مردے کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا، اب وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مردے کو ابھی دفن نہیں کیا گیا بلکہ منتقل کر کے کسی اور جگہ لے گئے اور وہاں دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ قبر سے نکال کے کسی اور جگہ منتقل کرنا، یہ بالاجماع ناجائز اور حرام ہے. صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ اگر وہ زمین غصب کی ہو یا حق شفاعہ کی وجہ سے ہو تو اس کے بعد وہاں سے پھر نکال کے منتقل کرنا جائز ہوگا، یا کوئی ایسی صورت ہو کہ اس زمین میں مردے کے لیے تکلیف پیدا ہو گئی ہو طوفان کی وجہ سے، زمین کے خراب ہو جانے کی وجہ سے. غصب کا مطلب یہ کہ وہ زمین ناجائز تھی جہاں دفن کر دیا گیا، بعد میں پتہ چلا یا احساس ہوا تو وہ اس سے واپس لینے کی وجہ سے اس جگہ کو، چونکہ دوسرے شخص کا حق ہے. اور حق شفاعہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمین کو کسی اور نے یا اس کے پڑوسیوں نے خریدنے کا ارادہ کیا تھا، تو یہ ان کی زمین تھی، ان کا چانس تھا اس کو بائے کرنے کا، خریدنے کا، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جگہ کو اپنے لیے استعمال کریں. تو ایسی جگہ پر اگر کسی نے کسی کو دفن کر دیا ہو، جس کا اب امکان اکثر کیس میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ باقاعدہ قبرستان بنے ہوئے ہیں، وہیں پر لوگ دفن کرتے ہیں، تو ان جگہوں پر جب دفن کر دیا گیا ہو تو اب اجماع ہے اس پر کہ یہاں سے منتقل کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. دفن سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل کرنے کی کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ مائنورٹی ویو ہے. دفن کے بعد ایک یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے لاش کی توہین ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس میں مجبوری کے بغیر اس لیے اس جگہ سے اس کو منتقل کرنا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے. اب کسی نے ایسی جگہ دفن کر دی جس میں اس میت کو دفن ہونے کا حق تھا، یعنی قبرستان وغیرہ میں، مگر وہ قبر پہلے سے کسی اور نے خریدی ہوئی تھی یا کھودی ہوئی تھی، تو اب اس کھودنے کی اجرت دے دے، لیکن اس صورت میں بھی لاش کو اس سے نکالنا یہ لاش کی توہین ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. قبر دوبارہ کھودنے کی اجازت اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی قیمتی چیز اس کے اندر گر گئی، کسی کا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے یا گولڈ وغیرہ ہے، ڈائمنڈ ہے، کوئی مال ہے، تو اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے قبر کھودی جا سکتی ہے. اسی طرح آج کے زمانے میں میڈیکو لیگل کوئی ریزن ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہوگی، لیکن اس میں ہر کیس کو باقاعدہ مفتیوں سے ڈسکس کرنا چاہیے. اب اس لیے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غلطی سے منہ قبلے کی طرف ہونا رہ گیا تھا، یا کروٹ صحیح نہیں دلائی تھی، یا کوئی معمولی چیز اندر رہ گئی ہے، کوئی کپڑا چھوٹا رہ گیا ہے، یا بعد میں کوئی تبرک کے لیے چیز رکھنی تھی وہ رہ گئی ہے، یا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، تو ان صورتوں میں بالکل بھی قبر کو کھودنا دوبارہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے. دفنانے سے پہلے انتقال کے بعد مردہ کو کسی جگہ پر منتقل کرنا، اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور اس کی دلیل وہ موتا امام مالک ہی کی ایک روایت سے لیتے ہیں جس کو وہ بیان فرماتے ہیں وہاں پر، کہ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عقیق علاقہ ہے مدینہ سے تھوڑا آگے، ان کا انتقال عقیق میں ہوا دونوں کا، اور یہ اپنے اپنے وقتوں میں ان کی لاش کو، باڈی کو اٹھا کے مدینے لایا گیا اور مدینے میں ان کی تدفین ہوئی، یعنی بقیہ میں. اور اکثریت کے نزدیک منتقل کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں एक दो मील के अंदर अंदर के जितनी जितने वक्त में जनाजे को दफन करने में ताखीर नहीं होगी, इसी तरीके से ये कि बॉडी डिजनरेट नहीं होगी, फटेगी फूलेगी नहीं, बू उसमें नहीं आएगी, तो इतना थोड़ा अरसा एक आध मील के फासले से अगर इस किसी ख़ास उज़्र की वजह से किया जाएगा तो इसकी गुंजाइश दी गई है, लेकिन नापसंदीदा इसको भी रखा है अक्सर ने। इन दो अस्हाब के साथ जो ये मामला हुआ, दोनों अशरा मुबशरा हैं, तो इनका मकाम और उनका फ़जल इतना था कि लोगों ने, और ये आखिरी हैं दोनों, हज़रत साद इब्न अबी वक्का सबसे आखिरी अशरा मुबशरा में से हैं कि जो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उनके मकाम की बुलंदी की वजह से, उनके दर्जे की वजह से लोगों ने ये पसंद किया कि उनको जन्नतुल बकी में होना चाहिए ताकि दीगर लोगों को उनकी ज़्यारत का आसानी से मौका मिले, जब वो रोज़ा रसूल की तरफ आएँ, मदीना मुनव्वरा की तरफ आएँ, तो उनके लिए ये दिक्कत ना हो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह भी यही फरमाते हैं कि मैं पसंद नहीं करता कि मुर्दे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, मगर ये कि अगर वो मक्का या मदीना या बैतुल मक़दस से बहुत करीब हो, यानी बहुत थोड़ी देर में वहाँ पहुँचा जा सकता हो, मील दो मील का इसीलिए अंदाज़ा लगाया गया, तो ऐसा करना ठीक है वरना नापसंदीदा है। अहनाफ के यहाँ भी ये मकरूह है और मकरूह तहरीमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा राशिदीन का ये अमल नहीं रहा, और इसमें मैयत की बेहुर्मती है। अब आज के ज़माने में अक्सर लोग जो वेस्ट में आबाद हैं, अमेरिका में, यूरोप में, तो ये अपनी रिश्तेदारों की मैयत को यहाँ से अपने मुल्कों में ले जाना चाहते हैं ताकि उनके करीब रहें और ज़रा उनको इसालु सवाब वगैरह के लिए आसानी। तो इसमें तो पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई आबाई कब्रिस्तान का ऐसा कॉन्सेप्ट ये कोई मुनासिब बात नहीं है। शरीयत का हुक्म तोड़कर आप उस बॉडी को यहाँ से लेकर अपने मुल्क में जाएंगे तो बॉडी की तौहीन तो होगी ही, इसके अलावा उसके साथ जुल्म भी बहुत होगा। अब ये जो तरीक़ाकार है यहाँ से मुर्दे को ले जाने का, अब वो आसान नहीं रहा कि आपने मैयत उठाई, तैयार की और अपनी मर्ज़ी से लाद के ले गए। अब इसमें बाकायदा उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। दो तीन मुख्तलिफ उसके तरीक़े हैं बॉडी को बाम करने के। एक तो ये करते हैं कि सारा खून जिस्म का निकालते हैं वेन से, और उसकी जगह एक कुछ लिक्विड है जो डाला जाता है, तो वो खून जो जिस्म से निकाला जाता है वो उस मैयत का हिस्सा है, वो भी अमानत थी कि उसके साथ ही दफन की जाती, उसको निकालना ये उसकी बेहरमती। इसी तरीके से जब शरीयत ने हमें नाखून तक को दफन करने का हुक्म दिया है, कोई ऐसा उज्व जो कट जाए हादसे में या खुदा न खास्ता किसी ऐसे ऐसी मौत की वजह से, जलने की वजह से, तो उस हिस्से को भी मैयत के साथ दफन करना है। अलग हो कहीं मिला किसी बड़े हादसे में, जहाज़ के क्रैश वगैरह में या गजबे वगैरह में कहीं ऐसी सूरत हुई, तो उस हिस्से को भी दफन करना है कि वो उसके जिस्म का हिस्सा है, और उसके जिस्म से पूरा 3-4 लीटर खून निकाल लिया जाए और उसको बहा दिया जाए, ज़ाया कर दिया जाए, और उसकी जगह ऐसा फ्लूइड या लिक्विड उसकी बॉडी में डाला जाए कि जिसमें यानी अल्कोहल रिलेटेड फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनॉल और इथेनॉल और इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म की स्पिरिट वगैरह, मुख्तलिफ वॉलेटाइल किस्म के फ्लेमेबल लिक्विड्स डाले जाते हैं जिसकी अजीब स्मेल, अजीब उसका, ताकि वो ज़रा बॉडी को डीके ना होने दे, ख़राब ना होने दे, डिकम्पोज ना हो, बॉडी मेंटेन रहे इस पूरे सफ़र के दौरान। और जगह जगह काट पीट करके उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बॉडी के शेप को मेंटेन रखने के लिए डाली जाती हैं, तो किस तरीके से इसको गुजारा यानी बर्दाश्त किया जाए और इसको कबूल किया जाए अपने चहीतों के लिए, अपने पसंदीदा लोगों के लिए जिनसे मोहब्बत है। एक तरफ ये दावा है कि हम उनको अपने से करीब करेंगे ताकि हम उनको याद रखें, जो लोग अपने घर में आबाई कब्रिस्तान में रहते, कितना लोग जाते हैं उनकी खिदमत करने, उनके लिए दुआएं करने, और ईसालो सवाब के लिए या उन तक अपना सवाब पहुंचाने के लिए कब्रिस्तान जाना तो ज़रूरी नहीं, ये तो यहाँ से भी किया जा सकता है, अपने घर से किया जा सकता है, जहाँ आप हो वहाँ से ये सारा काम हो सकता है। तो हमें फिर क्या ज़रूरत है कि हम मुर्दे को तकलीफ़ दें अपनी गरज के लिए। इतना बड़ा जुल्म लोग करते हैं, पैसा उस पर लगाते हैं, वो अलग है, बल्कि बाज़ औक़ात उसके लिए पैसा चूंकि इतना नहीं लगता, गवर्नमेंट्स बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर सपोर्ट कर देती हैं, तो गोया ये भी खुदगर्ज़ी है कि यहाँ लोकल अगर दफनाएंगे तो उन पर इतना पैसा लगेगा, और बॉडी अगर अपने मुल्क में ले जाएंगे तो फ्री में ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिल जाएगा, इसकी खातिर चंद सौ पाउंड बचाने के लिए उनको तकलीफ़ दो। और इससे इंसान की शफाकी और खुदगर्ज़ी जो नज़र आती है वो ये कि बूढ़े माँ बाप को जब उनकी हिफाजत, उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ कोई मौजूद न हो अपने मुल्कों में, तो पीछे पड़ के झूठ सच करके किसी तरह उनका वीज़ा अरेंज करके यहाँ ले आते हैं। वो बेचारे घरों के अंदर बंद हो जाते हैं, इसलिए कि यहाँ बाहर वो ज़बान नहीं जानते, लोगों से वो उस तरह मिलजुल नहीं सकते हैं, पड़ोस में ऐसे लोग नहीं हैं, कल्चर मुख्तलिफ है। वो बेचारे अपने घरों में 50-50, 60-60, 70 साल रहने के बाद अपने गाँव को, अपने शहर को, अपने मुल्क को छोड़कर अपनी औलाद की खातिर यहाँ कुर्बानी देने के लिए आ जाते हैं। हम अपनी कंडीशंस पे उनको खींच तान के लाते हैं ताकि हमारा नफ्स मुतमईन रहे, हमें गिल्ट फीलिंग ना हो, लोग हमारे बारे में बातें ना करें बल्कि हमारी वाह वाह करें कि हम अपने अम्मा अब्बा का बड़ा ख्याल करते हैं। उनके लिए हम वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन उनको यहाँ ले आते हैं ताकि हमारी अना को ठेस ना पहुँचे, लोगों की तरफ से हमें तान ना मिले, और हम ये कह सकें हम बहुत खिदमत कर रहे हैं अपने वालदैन की। तो उन बेचारों पर जुल्म करके उनको उनके पूरे कंफर्ट जोन से निकाल कर यहाँ ले आते हैं, अब वो बिल्कुल अजनबी बन के रहते हैं। अच्छा, उमूमन जो बेटे ये काम करते हैं, बच्चे ये काम करते हैं, ये वो इस बात से भी बिल्कुल बेखबर होते हैं कि वालदैन कभी अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत मुश्किल काम और मुश्किल फ़ैसला होता है। अब वो औलाद की खातिर यहाँ आ जाते हैं, जो वालिदा अपने घर में जिस आसानी से रहती थी वहाँ वो अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से चलती थी, उसमें जब बहू आती है तो वो उस घर की मालिकन होती है, और बहू बहरहाल जब तक माँ उसको बाकायदा इंचार्ज न बना दे, कंट्रोल न दे दे, माँ ही का घर रहता है। तो उसको अपना घर, अपने शौहर का घर, या अगर बेटे ने भी वो घर बनाया तब भी वो अपना घर समझ के उसमें चलती है। जब वो वहाँ से औलाद की खातिर हिजरत करके इधर आती है वेस्ट में, मगरिब में, तो अब ये घर पहले ही से उसकी बहू का है, बेटे का घर है लेकिन बहू उसमें पहले से मालिकन के तौर पर है मौजूद। तो उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो उसमें अपने आप को इस तरह एडजस्ट करे कि उस घर का अपने आप को हिस्सा समझे, बस वो आती है मेहमान की तरह रहती है। इसलिए आप नोट करेंगे कि वो इजी फील नहीं करती। आप घर में नहीं होंगे तो आपके किचन से बड़ी मुश्किल में ही कोई चीज़ उठा के ज़रूरत की वजह से कोई चीज़ इस्तेमाल करेगी, उमूमन खाने पर भी इंतज़ार करेगी कि आएगा तो खाएंगे, सब साथ आ जाएंगे तो खाएंगे, या बहू आ जाएंगी बच्चों को लेकर या नौकरी से तो फिर खाएंगे। यानी वो अजनबियों ही की तरह रहती, कि उसके लिए उस घर को अपना घर कबूल करना, तस्लीम करना आसान नहीं होता, और ये नेचुरल है, फितरी बात है। वो जानती है कि मैं यहाँ मेहमान के तौर पर आई हूँ, अब ये लोग जब तक मेरे साथ जैसा सलूक रखें बर्दाश्त करते रहो। तो हम उस पर ये जुल्म करके उसको वहाँ से यहाँ भी ले आए हैं, और यहाँ भी वो बेचारी पड़ी हुई है। अब यहाँ लोग मिलते नहीं हैं, जारी बात है, तो घर के अंदर बंद, मियाँ अपने काम में, बेगम साहब अपने चक्करों में, दोनों अपने अपने कामों में हैं। वो बेचारी घर संभाल रही तो उसके अपने मसले हैं, वो बच्चों को लाने ले जाने में लगी हुई है, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उसको भी टाइम नहीं मिलता, उसकी भी एक ज़िम्मेदारी और बढ़ा दी गई है। और अंदर अंदर खुश हो रहे हैं कि अम्मा ले आए घर के अंदर, कोई उसका फ़ायदा नहीं होता उमूमन। और इस तरह ये भी एक जो सिलसिला था कि अपने मुल्कों में जाते थे, अपने बच्चों को ले जाते थे, कल्चर दिखाते थे, बच्चे इस तरीके से ज़रा उस ज़बान सीखते थे, और ये ज़बान के बड़े असरात होते हैं, तो बच्चों को दीन का बहुत फ़ायदा होता है अपने मुल्कों में जाकर। तो वो सब भी हमने उठा लिया कि अब चलो अम्मा तो अब यहीं हैं, अब्बा भी यहीं हैं, तो अब वापस जाने की कोई सूरत ही ना रही। इस तरह हम अपने नस्लों को ख़राब कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इसके बाद पैसे बचाने के लिए इसको आबाई ख़ानदान कब्रिस्तान करार देकर कोई और ड्रामा करके अम्मा अब्बा का यहाँ से इंतकाल होने के बाद बॉडी का मुंतकिल करना ये तय कर देते हैं, और दुनिया जहाँ के उसमें हीले हुज्जते करके किसी न किसी तरह, मरने के बाद भी माँ बाप को नहीं छोड़ते कि सारी ज़िंदगी, जब पैदा हुए तो माँ के अंदर उनके पेट में रहते हुए उससे फ़वाद उठाते रहे, पैदा होने के बाद उसको तकलीफ़ें देते रहे। ज़ाहिर बात है वो फितरी है, छोटा बच्चा, उसकी वजह से जो तकलीफ़ होती है, माँ उसको तकलीफ़ नहीं समझती, ये अलग बात है। लेकिन हम अपने तौर पर ये सोचें कि हम उस पर अपने तौर पर ये ख्याल करें कि हमारी वजह से कितनी तकलीफ़ें उसने उठाई, इसीलिए उसका इतना मकाम और दर्जा है माशाल्लाह। तो माँ तो उसको नहीं फील करती, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने वालदैन के लिए। फिर उसके बाद वो बेचारी पाल के पोस के बड़ा करती है, तो ये शौहर का हो जाता है, बेटी है तो, और अगर बीवी है बेटा है तो ये बीवी का हो जाता है। उसकी भी ज़रूरत है तो उसका एक तकाज़ा है, वो छोड़ के घर चली जाती है, ये इधर बीवी बच्चों में लग जाता है और अम्मा अब्बा बेचारे साइड में हो जाते हैं। बहरहाल वो किसी ना किसी दर्जे में इन सब चीज़ों को कबूल करते हैं कि वो भी इसी से गुजरे हुए हैं। अब एक वक्त आता है कि अब ये बाहर आ गया है, तो अब अपने माँ बाप पे प्रेशर के किसी तरह से खींच के इनको वापस लाया जाए, अगर इतने अखलाक हैं और ये भी ना रहा तो अम्मा अब्बा को छोड़ के अलग ही हो गया। तो मुस्तकिल उनसे, अम्मा आप यहाँ आके रहिए, अम्मा अब्बा आप यहाँ आके हमारे साथ रहिए, हमारे यहाँ आप आते नहीं, बार बार इसके तकाजे, इसकी शिकायतें, इससे होता यह है कि वो बेचारे खुद प्रेशर में आके आ तो जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं। और अगर यहाँ उनका इंतकाल हो गया तो अब एक मुसीबत उठा के फिर उनको वापस फेंका जाता है वहीं, ये समझ के कि चलो वहाँ है तो कुछ। और हकीकत यह है कि नफ्स यही करता है कि पैसे यहाँ बच जाते हैं, फ्री में यहाँ से बॉडी चली जाएगी, चंद सौ में काम हो जाएगा, लेकिन ये सब खिलाफ शरा काम है, इससे बचना चाहिए किसी सूरत। बॉडी को अब एक ये नया सिलसिला के अमानतन यहाँ बॉडी रखवा देते हैं, अम्मा की ख्वाहिश थी कि वो वहाँ ना, अम्मा कहें अब्बा कहें तब भी इनकी बॉडी को यहाँ से मुंतकिल नहीं करना चाहिए, ये अक्सर के नज़दीक मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है, और दफनाने के बाद बिला उज़र हराम है, नाजायज़ है। जिन्होंने गुंजाइश कुछ लोगों ने रखी है वो उसकी हिकमतें दूसरी हैं, और इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे फ़िक्र करनी चाहिए। इसमें एक और कबाहत जो बहुत बड़ी लाजम आती है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है, जिसमें आपने फरमाया असरेऊ बिल जनाजा, जनाजे को जल्द अज जल्द दफनाओ, यानी इतना भी इंतज़ार ना करो कि जिसमें अगर किसी का इंतकाल जुमे वाले दिन हो जाए तो जुमे की नमाज़ के बाद जनाजा करेंगे ताकि ज़्यादा लोग आ जाएँ नमाज जनाजा में, ये भी करना फुकहा ने लिखा कि नाजायज़ और ग़लत है, बल्कि फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके उससे पहले पहले कर लो, भले चंद लोग हों, वो ज़्यादा बाबरकत जनाजा होगा, उसमें ज़्यादा फजीलत और अजर हासिल होगा। लेकिन आज हमने लोगों के इंतज़ार में एक जगह से दूसरी जगह करने में बहुत ताखिर की है, तो ये बहुत ही गैर मुनासिब अमल है, और इस प्रोसेस के अंदर बाज़ औक़ात हफ्तों लग जाते हैं कि बॉडी का पूरा एक चेकअप और सब कुछ, और उसको रखा हुआ है मोर्चरी के अंदर, फ्रीज़र्स के अंदर, और बिल्कुल उसको आर्टिफिशियली मेंटेन करके रखा हुआ है, हाई टेम्परेचर पे बेहुरमती हो रही है, वो खोलते हैं जिस तरह, कभी हम तो हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ को देखते हैं तो हमें मालूम है कि किस तरीके से जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो तो एक यूज़ टू है इस काम के, वो यूँ करके खींचते हैं पूरी बड़ा सा जो स्ट्रेचर है उसको, जिसमें वो फ्रिज में रखे होते हैं। तो आप कभी जाके उसको देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपने मरने वाले या मर जाने वाले माँ बाप को जो दुनिया से जा चुके हैं, अब उनके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ खींचा जाए और वहाँ फेंका जाए, कोई भी इंसान उसके साथ क्या मामला करे छोड़ के उनको बैठे हुए, बड़ी तकलीफ़ दे बात है, बहुत ही, यानी इंसान की शफाकी भी उसी तरीके से ख़राबी में तरक्की कर रही है जिस तरह उसके और दुनियादारियाँ और गुनाह तरक्की कर रहे हैं, नए नए अंदाज़ से आजकल लोग गुनाह करते हैं, कत्ल के मुख्तलिफ अंदाज़ लोगों ने आजकल इख्तियार किए, लोगों को टॉर्चर करने के, अजाब देने के, इसी तरह धोखा देने के, माली तौर पर एक दूसरे का हक गसब करने के नए नए तरीक़े ईजाद किए हैं, इसी तरीके से लोगों को महरूम करने के लिए, घर वालों को, बहन भाइयों को, उनके हिस्से ना उनको मिलने पाए, छोटे बहन भाई हों, बहनें हों, उनका माल गसब कर दो विरासत में से, उसके भी नए नए तरीक़े लोगों ने ईजाद किए हैं। यानी हम अपनी इंसानियत के जो मकाम था उससे गिर के इतना नीचे हो गए हैं कि असफल साफिलीन, हम गिरावट के इस मकाम पर पहुंच रहे हैं कि हमारे लिए हकीकत यह है कि इंसान का लफ्ज़ बोलना भी मुनासिब नहीं है, तौहीन है गोया, बल्कि शायद जानवर कहना भी, क्योंकि कुरान कहता है उलाई का कल अनआम, बलहुम अदल, ये उससे भी ज़्यादा गुमराह और ख़राब हो चुके हैं, जानवरों से भी ज़्यादा, चौपायों से भी ज़्यादा। तो अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें महफूज रखे ऐसी हरकतें करने से कि इस तरह के इंसेंटिव। अब उसका हल क्या है, अगर वाकई इतना एक्सपेंसिव है यहाँ पर दफन करना और मसाइल है, तो उसमें कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है। उसके लिए बाकायदा अपने आप को मस्जिद वालों से मुतालिक रखिए, दूसरे मुसलमान इंशाल्लाह ताला आसपास हैं, वो बड़े आसानी से मदद करेंगे। इस तरह की चैरिटीज़ बनी हुई हैं, उनसे रब्ता कीजिए। ये दुनिया के नामो नमूद के लिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की फ़िक्र ना करें, अल्लाह की फ़िक्र करें, आखिरत की फ़िक्र करें, अपनी फ़िक्र करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वालदैन के साथ उनके दुनिया से जाने के बाद क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया और अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे देखना चाहिए कि मेरे करीबी रिश्तेदारों के, माँ बाप बहन भाइयों की, किसी की मैयत की बेहुर्मती ना हो, जल्द अज़ जल्द उसको कब्रिस्तान में पहुँचाया जाए, उसका हक़ अदा किया जाए, अच्छे तरीके से उसको एहतराम के साथ इस दुनिया से रुख्सत किया जाए, उसके बाद ईसालु सवाब किया जाए, कसरत से उसकी तरफ से जो है वो सदक़ा जारिया के काम किए जाएँ, और अपने कुछ दुनियावी फ़वाद के लिए उनकी बेहरमती ना की जाए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की फ़िक्र ना करें। ये भी अपना फ़ायदा है ज़ाती। अम्मा अब्बा ने वसीयत की भी हो तो बेचारे कल्चर के तहत असर में आने की वजह से, मोहताज होने की वजह से, कि पता नहीं कोई हमें पूछेगा कि नहीं, वो क्योंकि लोगों के जहनों में यही होता है कि हम यहाँ होंगे अगर, और हमारे घर वाले रिश्तेदार सारे पाकिस्तान में, तो कौन पूछेगा, अम्मा अब्बा के कब्रिस्तान में न हुए तो शायद कोई ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ रहने वालों के लिए भी ईसालु सवाब करने वाले लोग मौजूद हैं, आप अपने मुल्क से भी करेंगे तब भी ईसालु सवाब हो जाएगा, तो उसके लिए करीब होना कोई ज़रूरी नहीं है। वरना साहबे कराम इतने दूसरे दूसरे शहरों में इनकी खबरें न पहुँच पाती, वो भी सब आके मदीना में मस्जिदुल नबवी के करीब जन्नतुल बकी में होना पसंद फरमाते, मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल माला में होना पसंद, किसी ने ऐसा नहीं किया, वो अब जहाँ रहे वहीं पर रहे। यही तरीका रहा है, जैसा बताया कि दो सहाबा की जो मिसाल आती है उनके अपने फजल और मकाम की वजह से, लोगों की आसानी के लिए, और ये जैसा बताया कि बाद के लोगों की इक्का दुक्का मिसालें हैं। सहाबा कराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इतने सहाबा बदर में, और ये बदर से ज़्यादा उहद में शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, आपने उनको मुंतकिल नहीं फरमाया, वहीं उनकी कब्र हुई उहद ही के मैदान में, हालांकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलफ़ाए राशिदीन का ये तरीक़ाकार नहीं रहा है, इसलिए इस पर अमल करना चाहिए और अपने नफ्स की इत्तेबा नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये नापसंदीदा अमल है, मकरूह है, एक जगह से मैयत को मुंतकिल करना आज के ज़माने में ऐसा करने का कोई ख़ास उज़र समझ में नहीं आता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।